તારીખ 7/5/1995 પૂજ્ય ભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા ભાવનગરમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 28.
કેવી રીતે થાય? પ્રશ્ન એમ છે કે ચાર પ્રતિબંધ જાણે પર લક્ષ્ય પૂર્ણતા કા લક્ષ્ય હો સકતા હૈ તો ફિર ચાર પ્રકૃતિ ક્રોધ માન માયા લોભ वो किस प्रकार से जाती है? तो ये जो चार प्रकृति है, क्रोध मान माया लोभ, उनका चार प्रकार है, चारों प्रकृतियों का चार भेद है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानवर्णी, प्रत्याख्यानवर्णी और स्वंजल। तो मुमुक्षु की भूमिका में वो अनंतानुबंधी शिथिल होती है, उसका रसमंद होता है, और चतुर्थ गुण स्थान में उसका अभाव होता है अनंतानुबंधी का। लेकिन क्रोध मान माया लोभ का बाकी का तीनों प्रकार चालू रहता है। फिर पंचम गुण स्थान आने से प्रत्याख्यान वर्णी का क्रोध मान माया लोभ का अभाव होता है, और बाकी के दो प्रकार के चालू रहती है क्रोध मान माया लोभ। फिर जब छठा सातवां गुण स्थान आता है तब अप्रत्याख्यान वर्णी का भी क्रोध मान माया लोभ का कषाय का अभाव होता है, और स्वंजलन कषाय का क्रोध मान माया लोभ का मंद उदय रहता है मुनिराज को, और उसका क्षय जो है वो बारहवें गुण स्थान में होता है। इस प्रकार से क्रोध मान माया लोभ चार भेद में है, और वो चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के ऊपर ऊपर के गुण स्थान में उसका क्षय होता है। रसमंद होता है, हाँ, इसकी डिग्री जो है, तीव्रता है, वो तारतम्यता है, वो मंद हो जाती है, लेकिन जाता नहीं है। हाँ, मान आता है लेकिन तीव्र रस वाला नहीं आता। और ज्ञानी को मान आता है, माया होती है, लोभ होता है, क्रोध होता है, तो उसमें अनंतानुबंधी माने चिकनापन नहीं है, रुखापन आ जाता है, चिकनापन मिट जाता है, ऐसा होता है। फिर पंचम गुण स्थान में उसका अनेक प्रकार का जो त्याग शुरू हो जाता है, तो प्रत्याख्यान वर्णी चली जाती है, और मुनि दशा में अप्रत्याख्यान वर्णी चली जाती है, एक स्वंजलन का उदय रहता है। चार प्रकार के प्रतिबंध का स्वरूप क्या है? चार प्रकार के प्रतिबंध में समाज प्रतिबंध होता है, वो क्रम से जाता है। फिर कुटुंब प्रतिबंध होता है, वो क्रम से जाता है अनुक्रम से। फिर शरीर देह प्रतिबंध, शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता की मुख्यता भी चली जाती है। और फिर संकल्प विकल्प प्रतिबंध में जो भी अनेक प्रकार का मिथ्या आग्रह होता है, मिथ्या निर्णय होता है, विपर्यास होता है, वो चला जाता है। और उस प्रकार से क्रम से चारों प्रतिबंध जाता है, तब जीव को पूर्णता का लक्ष्य होने की योग्यता आती है। तो जैसे जीव की योग्यता, हर एक को उतना समय लगता है वैसा नहीं है, किसी को कम समय लगता है, किसी को ज़्यादा समय भी लग सकता है, जैसे जिसकी योग्यता। और जैसा जिसका पुरुषार्थ, उस समय का कोई इसमें नियम नहीं है। ऐसे क्रम से जाता है। हाँ, कोई जीव बहुत तीव्र पुरुषार्थ वाला होता है तो बहुत अल्पकाल में चारों जाता है तो लगता है कि एक साथ गया, लेकिन बहुभाग क्रम से जाता है। ऐसा होता है, मिथ्या आग्रह में क्या है कि अपने कल्पना से अपना मुक्त होने का नक्की किया हो, ज्ञानी की आज्ञा अनुसार नहीं हो, और उसका आग्रह रहता हो। किसी को क्रिया का आग्रह रहता है, बाहर में त्याग का, किसी को पूजा भक्ति का आग्रह रहता है बाह्य क्रिया का, किसी को शास्त्र का पढ़ने की बाह्य क्रिया का आग्रह रहता है, कहीं न कहीं प्रकार का रहता है, जिसमें अपनी योग्यता को वो नहीं समझता है और जैसा निश्चय किया हो। वो प्रतिबंध तोड़ करके कैसे आगे निकलना, दूसरा प्रश्न वो है। आत्मकल्याण की जितनी मुख्यता होगी उतना वो प्रतिबंध तोड़ना सुगम होगा। आत्मकल्याण की दरकार जितनी तीव्र होगी उतना वो प्रतिबंध है वो गौण होकर के टूट जाएगा। तो जिसको आत्मकल्याण की भावना तीव्र हुई, यही इसका मुख्य साधन है। हाँ, यही परिमाण है। जितनी आत्मकल्याण की भावना उग्र होती है उतनी योग्यता और पात्रता विशेष होती है, और वो प्रयत्न साध्य है, अवश्य प्रयत्न साध्य है। नेगेटिव पॉइंट्स माने अपने अवगुण, अपने दोष। तो जिस जिस प्रकार के अपने दोष हैं उसको निकालने के लिए प्रयोग करना और अवलोकन करना, और जैसे जैसे वो निकलते जाएंगे उतनी योग्यता बढ़ती जाएगी, स्वाभाविक है। परिणाम में भावुकता नहीं है, परंतु शुद्ध अंतकरण से भावना हुई है, वो किस कारण से ख्याल में आता है? वो प्रश्न आगे भी चला था, मैं दोहराता हूँ उसका उत्तर, कि जो भावुकता होती है वो दूध के उफान की तरह आती है और फिर वो परिणाम मंद हो जाता है। आता है जोर से भाव और जल्दी आता है और चला जाता है भी जल्दी, बैठ जाता है, तो उसको कहते हैं भावुकता। तो वो इसका स्वरूप है। जबकि भावना होती है और अंतर में से जो भावना होती है वो दिन प्रतिदिन वृद्धिगत होती जाती है, ये भावना का स्वरूप है। भावना में मंदता नहीं आती है कभी, भावना बढ़ती ही जाती है। जबकि भावुकता है तो उसका चढ़ाव उतार बहुत रहता है। दूध का उफान की तरह वो जोर से आती है और जैसा दूध का उफान बैठ जाता है ऐसे वो बैठ जाती है। वो भावुकता है वो प्रकृतिगत होती है, कहीं कुछ एक जीवों को ऐसी प्रकृति होती है, ये प्रकृति स्वभाव है, उस प्रकार का उदय आता है प्रकृति का, तो जीव भावुकता में आ जाता है और वो उदय शांत होने से उसके परिणाम बैठ जाता है। जबकि भावना आत्मा में से आती है वो प्रकृतिगत नहीं है, वो अंदर आत्मा में से आती है, अंतर आत्मा में से आती है और वो वृद्धिगत होती जाती है। इसलिए दोनों का जो परिणमन है उसके कारण भी अलग अलग है। अब प्रश्न है कि भावुकता में से भावना में कैसे आए? तो भावुकता में तो आना नहीं है, लेकिन जिसकी प्रकृति हो उसकी बात अलग है। लेकिन हमको पहले भावुकता में आना है फिर भावना में आना है, ऐसा कोई क्रम नहीं है। लेकिन जिसकी भावुकता की प्रकृति हो उसको अपनी प्रकृति को अनुसरण नहीं करके अंदर में से आत्मकल्याण की भावना होनी चाहिए, यानी हमको हमारा आत्मकल्याण हो ऐसी जरूरत आवश्यकता लगनी चाहिए और वो सही समझ से लगती है, उसमें समझदारी का रोल है। अगर हमारी समझ ठीक है तो हम हमारा आत्मकल्याण के लिए सोचेंगे और उसकी भावना में आएंगे। अगर हमारी समझ ठीक नहीं है तो हम संसार के कार्य में, संसार के संयोग मिलाने के जुटाने के पीछे हमारी दौड़ है, वो तो सारे संसार के प्राणियों की है ही। एक भुंड भी होता है वो भी अपने बच्चे को ठीक रखता है या उसको खाने पीने को मिले उस तरह वो वहाँ व्यवस्था ले जाता है। दूसरी तो व्यवस्था वहाँ नहीं है, लेकिन जहाँ अच्छा कूड़ा का ढेर होता है वहाँ ले जाएगा अपने बच्चे को, तो खाओ तुम। हाँ, अंतकरण से भावना आएगी और वो तीव्र हो जाएगी तो चारों प्रतिबंध अपने आप जो है वो छूटता जाएगा, उसका वही इलाज है। तो हम कहने वो जा रहे थे कि एक भूंड है वो भी अपना परिवार का खिलाने पिलाने का बुद्धि रखता है और हम मनुष्य होकर भी हमारा परिवार जितने हमारी कार्य की सीमा या हमारी फर्ज ड्यूटी उतनी रखेंगे तो इसकी बुद्धि में और हमारी बुद्धि में कौन सी विशेषता हुई? कोई विशेषता नहीं हुई। अगर हमारे में कोई बुद्धिमानी विशेष है तो हमको हमारे आत्मकल्याण के विषय में सोचना चाहिए और आत्मकल्याण के मार्ग में हमें आगे बढ़ना चाहिए कि जिससे हमारा जन्म मरण और संसार के अनेक प्रकार का दुख है वो नाश हो जाए, उसका अभाव हो जाए। यही अपने ये बहुत दीर्घ दृष्टि का विषय है। क्या है? दीर्घ दृष्टि का विषय है। हमारा जीवन 150 साल का होता है, उतना ही सोचना ये संकुचित दृष्टि का, शॉर्ट साइट का विषय है। और हमारे मृत्यु बाद भी हमारा अस्तित्व तो रहेगा, शरीर और आत्मा जुदा होगा लेकिन आत्मा का अस्तित्व हमारा रहेगा, तो हमारी क्या अवस्था होगी और हमारी कहीं भी जाएंगे तो क्या व्यवस्था होगी, उसका विचार करके, उसके कारण कार्य को, उसके विज्ञान को समझ करके हम हमारे अनंत काल के रहने वाले अस्तित्व के विषय में हमारी सुव्यवस्था बिठाएं, यही हमारा दीर्घ दृष्टि का कार्य है। इसलिए मात्र 150 साल की व्यवस्था बिठाना उतनी छोटी टूकी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अगर हम बुद्धिमान हैं तो हमारी नज़र लंबी होनी चाहिए कि हम अनंत काल रहने वाले हैं तो हमारे रहने की क्या परिस्थिति होगी, किस कारण से क्या परिस्थिति होगी, इसका विचार हमें अभी करना चाहिए और अभी करने का ये मौका है। पशु गति में ये मौका नहीं मिलता, देव गति में बहुत कम मिलता है और नारकी में भी वो मौका नहीं मिलता। मनुष्य गति में सबसे अच्छा मौका है क्योंकि यहाँ हमारी बुद्धि कुछ स्थिरता से काम कर सकती है। देवलोक जितना देवों को राग होता है उतना भोगो भोग का यहाँ राग भी नहीं है, नारकियों को द्वेष होता है उतना यहाँ द्वेष भी नहीं है। और पशु गति में मति एकदम आवृत हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती है उतना नहीं है, यहाँ हमारी मति भी हमारा हित और अहित के विषय में अच्छी तरह काम कर सके उतना मति ज्ञान भी हमारे पास यहाँ अच्छा है। और हमारे आत्मकल्याण के मार्ग को समझने के लिए सत्संग सत्शास्त्र आदि व्यवस्था भी मनुष्य गति में सबसे अच्छी है। यहाँ ज्ञानियों का संग मिल सकता है और जिन्होंने भव भ्रमण का मार्ग को मिटाया है, अभाव किया है, ऐसा मार्ग प्राप्त अनुभवी पुरुष का संग भी यहाँ हो सकता है। इसलिए ये सबसे अच्छा मौका है, यानी सब अवसर आ चुका है। हम मनुष्य भी हुए हैं, छूटने का मार्ग को हम जैन धर्म कहते हैं, वो संप्रदाय नहीं है। जैन धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, सानकवासी, देरावासी, दिगंबर, तेरापंथी कोई संप्रदाय नहीं है। ये तो एक मुक्ति का मार्ग है जो विषय कषाय पर सम्यक प्रकार से विजय को प्राप्त करते हैं, उसको गुणवाचक शब्द से जैन धर्म कहते हैं। तो उसका विज्ञान है, वो वैज्ञानिक पद्धति है, उसको समझें और उसको ग्रहण करें तो ये अनुकूलता, सबसे ज़्यादा अनुकूलता हमको मिली है, यानी सब अवसर आ चुका है, हम स्वस्थ भी है, अच्छी तरह विचार करने योग्य भी है और हमारे यहाँ उस प्रकार की व्यवस्था भी है कि हम समझ सकें, तो उसका लाभ हमको उठा करके हमको भव भ्रमण का नाश हुए ऐसा मार्ग को, ऐसा उपाय को हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। आत्म भावना को और संस्कार को क्या प्रकार का संबंध है? संस्कार माने स्वभाव के संस्कार की बात होगी ना, जिसका प्रश्न है। संस्कार है वो तो एक ऐसी चीज है कि जो तीव्र परिणाम से उत्पन्न होती है, और स्वभाव का संस्कार होने में आत्मभावना वो नींव की चीज है, जिसको आत्मकल्याण की भावना हुई और आत्म स्वभाव की रुचि हुई तब आत्म स्वभाव का संस्कार डल जाता है या पड़ जाता है। स्वभाव की रुचि दो प्रकार के उत्पन्न होती है, एक रुचि को अव्यक्त रुचि कहते हैं और एक रुचि को व्यक्त रुचि कहते हैं। अव्यक्त रुचि का प्रसंग ऐसा बनता है कि जब कोई आत्म स्वभाव के नाता पुरुष होते हैं, आत्म स्वभाव के स्वरूप के अनुभवी पुरुष होते हैं, उसको आत्म स्वभाव का रस बहुत होता है, आत्म स्वभाव की महिमा बहुत होती है। वो आत्म स्वरूप को अपने रस से और महिमा से दर्शाते हैं और सुनने वाले को बहुत रुचि उत्पन्न हो जाती है, बहुत रस उत्पन्न हो जाता है, अतिशय मात्रा में होता है, तब उसको स्वभाव का संस्कार पड़ जाता है। उसमें उसको स्वभाव का संस्कार पड़ा कि नहीं पड़ा, उनका व्यक्त ख्याल उसको नहीं आता है, अव्यक्त रूप से वो काम बन जाता है, उसको कहते हैं अव्यक्त रुचि। और कोई मुमुक्षु की भूमिका में स्वरूप का भावभाषण तक आता है, स्वरूप की पहचान तक आता है, पदार्थ का निर्णय होता है, तब उसको अनंत गुण निधान, उसको गुण की रुचि तो पहले से ही होती है, और जब उनको अपने में अनंत गुण भावभाषित होते हैं, अनंत गुण का भावभाषण होता है, तब स्वरूप में स्वरूप जो गुण निधान है, गुण भंडार है, उसकी महिमा और उसकी रुचि बहुत तीव्रता से उत्पन्न होती है, तब नियम से उनको स्वभाव का संस्कार पड़ता है। ऐसे स्वभाव का संस्कार होने का दो प्रकार है, उसमें उसको मालूम पड़ता है कि अब मेरा भव भ्रमण चालू रहने वाला नहीं है, तो व्यक्त रूप में उसको ख्याल में आता है, उसको व्यक्त रुचि कहते हैं। और दोनों के मूल में आत्मकल्याण की भावना तो होती ही है, उतना कनेक्शन है भावना के और संस्कार के साथ। वहाँ कभी फिर से प्रश्न माइक पर मैं दोहराता हूँ कि सत्पुरुष की पहचान होती है स्वभाव की पहचान होने के पहले, आत्मा की पहचान होने के पहले, उस वक्त कोई संस्कार पड़ता है कि नहीं पड़ता है, वो सा प्रश्न है ना। उस वक्त अगर अव्यक्त रुचि होती है तो संस्कार पड़ता है क्या? कि सत्पुरुष की पहचान हुई, सत्पुरुष वो है कि जिसको आत्मा का अनुभव है, और आत्मा का अनुभव उसको है कि जिसको आत्मा का अत्यंत महिमा होती है, उसको ये अनुभव होता है, क्योंकि अनुभव ये आत्म स्वरूप के अपूर्व महिमा का एक कुछ तीव्र महिमा का ही एक स्टेज है जिसमें अनुभव आ जाता है। तो जिसको अत्यंत अत्यंत महिमा होती है वही अनुभवी पुरुष होते हैं। और ऐसा पुरुष आत्म स्वभाव की महिमा का प्रदर्शित करते हैं अपने वाणी में, अपने व्याख्यान में, अपने प्रवचन में, तब रुचि, पहचान पूर्वक रुचि होती है, तो संस्कार पड़ जाता है अव्यक्त रुचि में, हो सकता है। लेकिन रुचि उतनी नहीं हो तो जब स्वभाव की पहचान आएगी तब संस्कार पड़ेगा। वो अव्यक्त रुचि की मात्रा एक होती है, उसकी एक डिग्री होती है, रुचि की भी एक डिग्री होती है, उस डिग्री में वो संस्कार पड़ता है, ऐसी बात है। उसमें तीव्रता मंदता डिग्री की होती है। मंद रुचि वाले को जहाँ तक तीव्र रुचि नहीं होती है वहाँ तक संस्कार नहीं पड़ता है। तो कभी किसी को क्या होता है कि स्वरूप की पहचान आती है तब तो वो डिग्री आई जाती है, नियम से आई जाती है, किसी को पहले भी आती है तो संस्कार पड़ जाता है। तो ये तो संस्कार कब पड़ता है वो जानकारी का विषय है, और कोई ज़्यादा प्रयोजन इसका नहीं है, एक जानकारी कर लेने का विषय है, इतना प्रयोजनभूत विषय वो नहीं है। इसलिए जानकारी करने में ज़्यादा उपयोग को लंबाना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो अप्रयोजनभूत विषय होता है उसमें हम हमारी कुतूहल वृत्ति को पोषण देते हैं तो हमारी आत्मरुचि है वो मंद हो जाती है, और पर रुचि तीव्र होती है, और पर रुचि पर अप्रयोजन भूत विषय जानने की रुचि जब तीव्र होती है तो प्रयोजन भूत विषय में हमारा जो दृष्टिकोण साध्य होना चाहिए, जिसको हम विवेक कहते हैं, आत्मकल्याण का विवेक कहते हैं, वो विवेक है वो मंद हो जाता है। इसलिए पर रुचि का पोषण हमें कभी करना नहीं है, आत्मरुचि का पोषण करना है, पर रुचि का पोषण नहीं करना है। हमें हम सोनगढ़ गुरुदेव के प्रवचन सुनने को जाते थे, तभी मुमुक्षु मुमुक्षु के बीच में कुछ ऐसी भी चर्चा चलती थी कि गुरुदेव के प्रवचन में हम क्या सुनते हैं, आपस में प्रश्न चलता था कि भाई गुरुदेव के प्रवचन में आपने क्या सुना, तो कोई ऐसा कहते कि आज तो नए नए न्याय आए, क्या अनेक प्रकार के बहुत से न्याय गुरुदेव ने समझाए। कोई कहे कि आज नई नई बातें बहुत आई, कोई कहते हैं कि आज गुरुदेव के प्रवचन में बहुत सूक्ष्मता थी तो हमको बहुत पसंद आई। तो जिसने जो बात सुना, जो बात अच्छी लगी, जो फैक्टर अच्छा लगा वो बताते थे। तो ऐसे हमारे चर्चा में कभी वो बात आई थी तो हमने ऐसा ही इतना ही बताया कि गुरुदेव हमको आत्मस्वरूप दर्शाते हैं, वो भी आत्मस्वरूप की स्वरूप महिमा में, स्वरूप रस में विभोर होकर के हमको दिखाते हैं, और इसका हम मुद्दा दिखाते थे वो इस प्रकार के थे कि देखिए अलग अलग शास्त्र पर गुरुदेव का प्रवचन चलता था, अलग अलग शास्त्र की अलग अलग गाथाएं पर गुरुदेव प्रवचन करते थे, लेकिन उनका प्रवचन का शुरुआत कैसे होती थी कि आत्मा है ऐसा करके थोड़े वो अंदर में शांत हो जाते थे कि ये आत्मा है वो ज्ञानानंद निर्मलानंद नित्यानंद ऐसे करके इतना आत्म स्वभाव की महिमा में विभोर हो जाते थे। उसके पहला वो अपना स्वरूप की स्थापना करते थे स्वरूप महिमा के साथ, जिसने सुना होगा उसको पता होगा, फिर बाद में जो प्रस्तुत विषय सामने है उस पर वो अपना प्रवचन चलाते थे, और वो प्रवचन में भी वो आत्मस्वरूप की महिमा बार बार करते जाते थे। जैसे बंध तत्व का प्रवचन चल रहा हो, समय सार बंध अधिकार, तो अबंध स्वरूपी आत्मा का पहला वो स्थापन करते थे, आत्म स्वभाव का स्थापन करके बाद में कहते थे कि बंध का अभाव करने का अधिकार है। क्या बंध का अभाव कैसे किया जाए, कि ऐसे अबंध स्वभाव का आश्रय लेने से, अबंध स्वभाव का अवलंबन लेने से अंदर में बंध का अभाव होता है। उस तरह से आत्म स्वभाव को पहले वो स्थापित कर देते। तो हम ये कहते थे कि हम तो ये सुनते हैं, आत्मा और आत्म स्वरूप की महिमा के सिवा हम दूसरा कुछ सुनते नहीं है, और हमारी जो आत्म रुचि है उसका हम पोषण करते हैं, उसको बहुत हमको पुष्टि मिलती है, यही सुनने लायक चीज है। बाकी सब सुनने लायक उतना प्रयोजनभूत नहीं है। फिर भी कभी किसी को अपने लिए कोई बात आती है तो व्यक्तिगत रूप से उस प्रकार का प्रयोजन हो सकता है। चाहिए हम यहाँ स्वाध्याय में क्यों इकट्ठे होते हैं, कि स्वरूप को जाने और स्वरूप की रुचि का पोषण करे। स्वरूप की रुचि नहीं हो तो जागृत करे, रुचि हो तो उसको और वृद्धिगत करे, और इस तरह से हम अपने आत्मस्वरूप की समीप चले जाएं। समीप जाने के बाद अनुभव होगा। और कोई प्रश्न है? ऐसा है कि सत्संग की भावना से सत्संग का योग भविष्य में भी मिलता है, तो उस प्रकार का भाव में उस प्रकार का पुण्य कर्म का बंध, जैसे अभी अपने को सत्संग मिल रहा है तो ये पुण्योदय है कि ऐसा संयोग अपने को मिल रहा है। तो भूतकाल में हमने ऐसा भाव किया होगा कि ऐसा हमको सत्संग मिले तो अच्छी बात है, तो ऐसा पुण्य बंध होता है तो दोबारा मिलता है, लेकिन उसमें हमारी आत्मरुचि तीव्र होती है तो संस्कार पड़ता है, उतनी बात है। अगर हमारी रुचि नहीं है और हमारी पर रुचि है, हम बैठते हैं तो स्वाध्याय करने को, लेकिन हमारा ख्याल जता है कि वो क्या देखता है, वो क्या पूछता है, वो कैसा है, फलाना कैसा है, ऐसे अगर हमारी पर रुचि है तो हम उधर उधर देखते रहेंगे, अगर हमारी स्वरुचि है तो हम हमारे आत्मरुचि को पोषण करने का ही हमारे परिणाम चलेगा। तो ये तो एक संयोग बनता है, एक प्रसंग बनता है। वर्तमान में हमारे परिणाम कैसे रहते हैं, सबका तो एक सरीखा रहने वाला नहीं, जैसे जिसकी योग्यता है वैसा परिणाम रहेगा और उसका फल आएगा, कोई परिणाम निष्फल नहीं है, सब परिणाम सार्थक और सफल होते हैं, जैसे परिणाम वैसा फल, सीधी सादी बात। हाँ, ये रुचि में क्या है कि जिसको जिसकी जरूरत लगी है, आवश्यकता लगी है, वहाँ से उसकी रुचि पैदा होती है। रुचि उत्पन्न होने का मूल कारण क्या है? कि जरूरत में से रुचि उत्पन्न होती है। हमको हमारा आत्मकल्याण हमारा आत्मा के आश्रय से चाहिए, इसकी जरूरत लगी है तो उसकी रुचि हो जाएगी। और बाहर में हमको बाह्य पदार्थ की जरूरत लगी तो उसकी रुचि हो जाएगी। वो रुचि तो अनादि से है ही, बाह्य पदार्थ की आवश्यकता महसूस होती है और उसकी रुचि भी रहती है। तो इसके लिए हम करते हैं। देखिए, जो तत्व को नहीं समझते हैं, ओक संज्ञा से अपने अपने संप्रदाय का धर्म का पालन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो धर्म के क्षेत्र में जाएगा, मंदिर में जाएगा, गुरु के पास जाएगा, कुछ भी करेगा, तो उसमें अंदर में भावना रहेगी कि ऐसा धर्म करते हैं तो हमारी अनुकूलता बनी रहे और हमारी प्रतिकूलता है वो नाश हो जाए। तो संयोग की रुचि तो पड़ी है, तो धर्म के क्षेत्र में भी संयोग की रुचि काम करेगी और ऐसे ही परिणाम रहेगा कि हम जो कुछ करते हैं उससे हमारा ऐसा प्रकार हो कि अनुकूलता बनी रहे, प्रतिकूलता चली जाए। लेकिन जो वितराग मार्ग है उसमें तो इस प्रकार की बात नहीं होती है, क्योंकि सिद्धांत ही हमारा वो है कि सुख आत्मा में है, आत्मा का सुख आत्मा से बाहर कहीं भी नहीं है। ये अपना मूल सिद्धांत है। इसलिए हमें सुख शांति चाहिए तो आत्मा में से चाहिए। बाहर का सुख तो पराधीन है, आकुलता रूप है और वास्तव में सुख नहीं है और सुखाभास है, आभास है, वास्तव में वो बात नहीं। हाँ, सही बात है। हमको अभी सत्संग मिला तो अभी आत्मकल्याण क्यों नहीं कर ले? भविष्य में ऐसा सत्संग मिलता रहे ऐसा पुण्यबंध की अपेक्षा क्यों रखे? हम पुण्यबंध के लालायत नहीं है, हम तो आत्मकल्याण के लालायत है। ऐसा ही होना चाहिए, परिणाम तो ऐसा आना चाहिए। सही बात है। पत्रांक 396 में चित्रपट की प्रतिमा का हृदय दर्शन से आत्मस्वरूप का प्रगटपना महान फल है, यह बात कई भूमिका के लिए है, इसका स्पष्टीकरण करिए। तेमज हृदय दर्शन की बात स्पष्ट करिए। पत्रांक 396 सौभाग्य भाई ऊपर का एक पत्र है। ते पुरुष के स्वरूप को जान करके उसकी भक्ति के का सत्संग से बहुत बड़ा फल है, जो चित्रपट के मात्र योग से और ध्यान से नहीं है। क्या हुआ है कि सौभाग्य भाई को एक ऐसा विकल्प आया था कि हम आपका चित्रपट घर में रख लें और उसका दर्शन करें हमेशा हमेशा, क्योंकि आप तो प्रत्यक्ष रूप तो हमारे पास है नहीं, आप अलग रहते हैं, हम अलग जगह रहते हैं, तो आपका चित्रपट का घर पे एक रख ले तो उसका दर्शन हम करें। उस विषय में कृपालु देव अपनी ओर से अपने विचार और अभिप्राय बता रहे हैं। क्या बात है, आगे पीछे उसका रेफरेंस क्या है, पुरवार पर संबंध क्या है इस बात का। तो कहते हैं कि उस पुरुष का मैंने मेरा स्वरूप को जान करके यानी पहचान करके, सत्पुरुष के स्वरूप को पहचान करके, पहचान से उत्पन्न उसकी जो भक्ति होती है, सही भक्ति होती है, और उसका जो सत्संग प्रत्यक्ष योग सत्संग करने का जो प्रकार बनता है, इसका बहुत बड़ा फल है। जो चित्रपट के मात्र योग से और ध्यान से नहीं है। आगे लिखते हैं कि जो वह पुरुष के स्वरूप को जानता है, उसको स्वाभाविक अत्यंत शुद्ध ऐसा आत्मस्वरूप प्रकट होता है। क्या कहते हैं कि जो सत्पुरुष को पहचानता है, उसको स्वाभाविक ऐसा अपना आत्मस्वरूप है, अत्यंत शुद्ध आत्मस्वरूप है, उसका अनुभव उसको होता है, प्रकट होता है। और प्रकट होने का कारण वह पुरुष जान करके सर्व प्रकार से संसार कामना को परित्याग करके और संसार परित्याग रूप करके और परित्यागी और संसार मैंने परित्याग रूप करी शुद्ध भक्ति से वह पुरुष स्वरूप, पुरुष का स्वरूप विचार करने योग्य है। क्या करना कि उस प्रकट होने का मैंने आत्मस्वरूप प्रकट होना, मैंने स्वभाव का प्रत्यक्ष दर्शन साक्षात्कार होना, आत्म साक्षात्कार होना, इसका कारण वो सत्पुरुष की पहचान है ऐसा जान करके सर्व प्रकार से संसार की कामना को परित्याग कर देना। सत्पुरुष के संग में जाना उस वक्त संसार की कोई कामना को साथ लेकर के नहीं जाना, केवल असंसार मैंने आत्मकल्याण, असंसार मैंने आत्मकल्याण, वो आत्मकल्याण का हेतु से शुद्ध भक्ति से, संसार की कामना वो शुद्ध भक्ति वाली नहीं है, वो सकाम भक्ति है, वो मलिन भक्ति है, वो नहीं रख करके, उसका त्याग करके उस पुरुष स्वरूप, उस पुरुष का स्वरूप विचार करने योग्य है या उसका ध्यान करने योग्य है, लक्ष्य करने योग्य है।
पहचान वाले गुरु को ऐसे प्रणाम होते
हैं, ऐसा है कि कभी कभी पूर्व संस्कार से या कोई संयोग से हो भी जाते हैं, जो सुभाग भाई को हो जाता था, ऐसा भी कभी बना हो सकता है। चित्रपट की प्रतिमा का हृदय दर्शन से ऊपर लिखा वह आत्मस्वरूप का प्रकटपना महान फल है। क्या है, चित्रपट में जो प्रतिमा है उसका हृदय से दर्शन करना, ऊपर ऊपर से नहीं करना, हृदय से दर्शन करना। हृदय से दर्शन का मतलब क्या है कि बहुत भाव से दर्शन करना, बहुत महिमा से दर्शन करना, इससे भी ज्यादा ऊपर कहा मैंने उसको पहचान करके उसकी निष्काम भक्ति करना, उसकी महिमा करना, इसका फल क्या है, आत्मस्वरूप का प्रकट होना, आत्म साक्षात्कार होना है। ओ वाक वचन निर्विसंवादी जान करके लिखा है। अब क्या वो कहना चाहते हैं कि अगर आप घर में मेरा चित्रपट यानी फोटो रख लेंगे तो उसका रोज दर्शन करके कहीं एक प्रकार के संतोष में आ जाओगे कि रोज मैं इसका दर्शन तो कर लेता हूँ। तो प्रत्यक्ष सत्समागम करने की भावना में कोई कमी तो नहीं आ जाएगी। इसलिए आपको मेरा फोटो घर पे नहीं रखना है क्या? परोक्षता का भाव पोषण करने के लिए मेरा फोटो आपको घर में रखना नहीं है। प्रत्यक्ष समागम की भावना उग्र हो जाए इसलिए फोटो नहीं रखना अच्छा ही है। देखो कैसी सूचना की है, हाँ, किस प्रकार का मार्गदर्शन दिया है। और ये वो सुभाग भाई जैसे सुपात्र जीव को कि नहीं, आप तो मेरा प्रत्यक्ष दर्शन के लिए जो लालायत है उसके लिए आपको तीव्र भावना रहती है, वही अच्छी है। आप हमारे प्रत्यक्ष सत्संग में आओगे तो आप आत्म स्वभाव की प्राप्ति साक्षात्कार कर लोगे, और घर में फोटो रोक रख करके दर्शन करके संतोष पकड़ लोगे कि चलो हमने रोज दर्शन तो कर लिया, नित्य हमेशा हम दर्शन तो कर लेते हैं। उसमें आपकी सत्संग की भावना मंद हो जाएगी तो वो भक्ति से उतना फल नहीं है जितना फल प्रत्यक्ष सत्समागम से होता है। तो इसलिए दो बात का विचार कर लेना, और हमारी ऐसी सलाह है, सूचना है, भलामण है कि फोटो नहीं रखना है, प्रत्यक्ष सत्संग ही करना है, फोटो मत रखना। ऐसे फोटो रखने का जो राग है उसमें नुकसान होता है, उसका यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया है, और ऐसा कहीं नहीं हो जाए तो उसको ध्यान रखने के लिए सूचना दिया है, ऐसे सूचना समझ लेना।